और जो जो बच्चे 15 एंड यंगर हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स से पहले पूछें, और जो स्कूल के अंदर जो नाम उनके लिए जाते हैं उसके लिए भी पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए। तो पियर पॉलिवर ने भी अभी तक कुछ बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं यूज ऑफ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स फॉर किड्स। और उन्होंने कहा जी कि उनसे जब पूछा गया कि आपका व्यूज क्या है जेंडर के ऊपर या ट्रांसजेंडर ट्रीटमेंट चिल्ड्रन का जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर उन्होंने कोई फिर खास जवाब ना दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उनके जो एडल्ट डिसीजंस हैं उनको हम जो है जरा थोड़ा सा उनको यानी लाइट दिखाएं और उनके एडल्ट्स जो हैं उनको इस सारी चीज के बारे में पता होना चाहिए। ट्रूडो साहब जो हैं उनको भी उन्होंने कहा जी कि उनको जरा थोड़ा सा इन प्रोविंशियल जो डिसीजंस हैं इनके ऊपर अपनी भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर आपको पता ही है कि कनाडा में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, अपने वो प्रोविंसेस जो है अपने खुद बनाते हैं डिसीजन, लेकिन इन्होंने कहा जी कि नहीं ट्रूडो साहब को इस मसले में बोलना चाहिए। इसके रिएक्शन में लिबरल एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है रैंडी बॉयसनॉल्ड, हमने आपको बताया था कि इज ओपनली गे, उन्होंने पहले भी अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ की यह बात अच्छी नहीं मानी थी और उन्होंने आज फिर भी कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं ना तो पियर पॉलिवर के नाम के साथ और ना ही डैनियल स्मिथ के नाम के साथ एमडी देखता हूं, तो ये दोनों ही डॉक्टर्स नहीं है, तो इसलिए दे हैव नो बिजनेस टू स्पीक इन दिस। ये सारे का सारा काम जो है कि किसी बच्चे को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ये एक डॉक्टर जो है वो उसके ऊपर बात कर सकता है, ये दोनों नहीं बात कर सकते। इट इज बिकॉज इट इज नॉट योर बिजनेस सो यू डोंट नीड टू स्पीक अबाउट इट, उन्होंने ये कहा। खुश हो
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
खुश हो तो सी
ठीक है,
बहुत खुश ठीक है। आज जी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर साहब, उन्होंने बहुत आज गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा जी कि एक हमने पूरी लिस्ट दी थी कि जो लोग जिनके के रिलेटिव्स गाजा के अंदर हैं उनको आने दिया जाए। आपको पता ही है कि एक ही क्रॉसिंग है जिससे कि ये आ सकते हैं जो कि इजिप्ट और इसराइल के बॉर्डर पे है, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ये दी थी, ये पूरी की पूरी हमने लिस्ट दी थी यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और हमने उनकी एप्लीकेशन जो थी जो उनके रिश्तेदार यहां पे कनाडा में थे उनको एक्सेप्ट किया था टू रीयूनाइट 1000 पीपल विद देयर फैमिलीज हियर, तो अभी तक वो लिस्ट जो है उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जी कि हम डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, लेकिन मैं फैमिलीज के साथ झूठ नहीं बोलना चाहता, अगर इसके अंदर डिलेज आए या ये फुलफिल ना हम कर सके तो मैं उनको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता कि हर हाल में उनके जो रिलेटिव हैं यहां पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि मुझे डर लग रहा है कि जैसे फॉरन अथॉरिटीज जो हैं वो भी इस डर में है कि ये जो हमने प्रोग्राम अनाउंस किया था कि जिन लोगों के रिश्तेदार यहां पे हैं वो गाजा से आके उनके साथ मिल सकते हैं, तो शायद उनको भी हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो ज्यादा एतबार नहीं है। फिर उन्होंने कहा था जी कि हमने ये अनाउंस किया था कि हम इस प्रोग्राम को एक्सपैंड भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी कि और भी कुछ लोगों को इजाजत दे सकते हैं, तो वो कहते हैं जी कि मैं इसके ऊपर अभी कोई भी बात नहीं कर सकता हूं। तो ये जनाब आज बातें हुई हैं। स्टैट्स कनाडा की आज खबर आई है जी, और उसके मुताबिक जो कनाडा है उसने ट्रेड डेफिसिट जो है वो शो किया है एट द ट्यून ऑफ $312 मिलियन इन दिसंबर, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि एक्सपोर्ट्स जो थी वो नीचे रहीं कार्स ट्रक्स और क्रूड ऑयल की, उन्होंने कहा जी कि इम्पोर्ट्स चूंकि ऊपर रहीं तो उसकी वजह से जो है ये डेफिसिट में इजाफा हुआ है। नवंबर सरप्लस जो था वो डाउनवर्डली जब उन्होंने रिवाइज किया तो वो आ रहा था 1.07 बिलियन फ्रॉम 1.57 बिलियन जो कि अर्लियर रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा जी कि टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नीचे आई 1.9% से दिसंबर में, जो कि सेकेंड कंजेकेटिव डिक्लाइन था, और इम्पोर्ट्स जो थी वो ज्यादा हो गई 0.2% से ऊपर गई। जीडीपी जो था वो दिसंबर में ग्रो किया बड़ा ही मतलब है उसमें हैरत हुई इनको, और उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी ओवरऑल जो 2023 में थी पॉजिटिव नोट पे एंड हुई। बैंक ऑफ कनाडा जो था उसने तो वैसे प्रोजेक्ट किया था जीरो ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर आफ्टर 1.1% कॉन्ट्रैक्शन इन इवन थर्ड क्वार्टर Q3। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नीचे आई 8.2% से, जिसमें के शामिल थे जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, पैसेंजर कार्स, लाइट ट्रक्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, तो इसकी वजह से ज्यादा डेंट पड़ा है। और वो कहते हैं जी कि क्रूड ऑयल की जो थी एक्सपोर्ट्स वो नीचे रही, क्योंकि जाहिर है कि क्रूड ऑयल की प्राइस में ही कमी आई थी वो चूंकि कमी है तो इसलिए
पूरी रिपोर्ट आप पढ़ें तो do you need a university graduate to tell you that agar export zyada hai export kam hai import zyada hai
तो जीडीपी नीचे रहेगा, डेफिसिट आएंगे, मैं जो है इकोनॉमी अच्छी से नहीं चलेगी। भाई भैया आपको पता है इनको पैसे मिलते हैं बड़े सारे ये रिपोर्टें लिखने के लिए, क्या बात कर रहे हो आप, उन्होंने पैसे नहीं अपने बनाने,
मुझे भेज दो यार,
मतलब तो अनु नहीं मिल रहे पैसे थे वो भी ना अपने पैसे बना, मतलब हाउ हाउ बैड ऑफ यू माजद
भाई। हम रिपोर्टें,
हम तो 6 महीने पहले ही बता देते हैं ना, हम तो Q2 में बता देते हैं कि Q3 और Q4 गंदा रहेगा है जी, तो उनको इतने फुर्ती से काम करने वाले नहीं चाहिए, उनको हर क्वार्टर के अलग अलग पैसे मिलते हैं।
अच्छा
ठीक है, तो उन्होंने हर क्वार्टर में काम करना आता है।
हो गया जी,
समझा करो मजे से, आपको तो समझ नहीं आ रही है बात आजकल, पता नहीं क्या हो गया आपको। अच्छा जी, होना ये नई रिपोर्ट जो है ये उसके ऊपर हमारे एनवायरमेंट पे, पहले तो ये था ना जी कि जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत सारे जो है अब बर्फें लोगों जगहों पे नहीं पड़ेंगी, बहुत सारी जगह गर्म हो जाएंगी। आज रिपोर्ट आई है, नहीं ये गलत है, पुट्टा इसका साफ होएगा। हाँ जी, अब ये दूसरी रिपोर्ट आई है, फोरकास्टर्स जो है वो कहते हैं जी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे थे जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि अब बर्फें कम पड़ेंगी, स्नो स्टॉर्म्स कम आएंगे, नहीं, कुछ हिस्सों में अब चीजें ज्यादा कोल्ड रहेंगी, उसमें से कनेडा भी है, कनेडा में भी कोल्ड कंडीशन अब ज्यादा बढ़ेंगे।
रिपोर्ट आज छापी है वो, क्योंकि दो दिन से
मेरी टाइम्स में स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं,
150 सेंटीमीटर की स्नो आ गई, तो जल्दी से छाप दो।
हाँ अच्छा जी, हूं इस दफा तो बहुत बड़ा एक बंदा जो है उसकी इन्होंने जो है बोली है, MIT का रिसर्चर है माजद भाई, MIT का रिसर्चर है जी जूडा कोहेन, उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा जो अब क्लाइमेट है ये स्पॉन्ज की तरह बन गया है जी। अच्छा, वो कहते हैं जी कि क्या होता है कि जिस वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाता है ना, तो स्पॉन्ज जो है वो बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो चूस लेता है, उसके बाद क्या होता है कि आप जिस वक्त टेम्परेचर लो होते हैं तो जैसे आप स्पॉन्ज को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं, उसी तरह जब ये ठंड पड़ती है तो ये स्पॉन्ज की तरह जो एटमोसफियर है वो भी अपने आप को स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से पानी गिरता है, और वो जब ज्यादा पानी गिरता है तो ज्यादा नहीं नहीं ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कि उसकी वजह से जो है मौसम के अंदर चेंजेस आती हैं, जिसकी कि अभी हमने आपको मिसाल बताई है कि नोवा स्कोशिया के जैसे कोस्टल जो एरियाज हैं वहां पे 150 सेंटीमीटर का स्नो आया है, खासतौर पे पार्ट्स ऑफ केप ब्रेटन में। तो वो कहते हैं जी कि 20 ईयर से तो हमारा यही कंसेंसस था कि वर्ल्ड जो है वो गर्म होती जा रही है तो उसकी वजह से स्नो घटती जा रही है, लेकिन अब जो नई आई है क्लाइमेट चेंज, उसमें यह होगा कि ज्यादा इंटेंस स्नो और रेन्स आएंगी, ऐसा है। यूरोपियन यूनियन की कमीशन जो है जी आज वो बहुत ही गुस्से में नजर आई फिर से हंगरी से, और उन्होंने कहा जी कि हंगरी के खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि इसने जो अपना रीसेंट लॉ लेकर आया है टू प्रोटेक्ट नेशनल सॉवरेनिटी उसके ऊपर। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, वैसे भी यूरोपियन यूनियन को ज्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि ही इज क्लोजर टू पुटिन, तो वो कहते हैं जी कि ये सारे का सारा जो लॉ लेकर आए हैं ये गलत है। इन्होंने अभी जो नया लॉ बनाया था ऑर्बन साहब ने, उसमें उन्होंने फॉरेन फंडिंग जो कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को दी जाती है या उन लोगों को दी जाती है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पब्लिक डिस्कोर्स को, उसके ऊपर कंप्लीटली कट लगा दिया था। इसके ऊपर बात करते हुए आज यूरोपियन यूनियन के कमीशन ने कहा जी कि हमने फॉर्मल नोटिस भेजा है आज बुडापेस्ट को, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है जो यूरोपियन यूनियन जो है जो ब्लॉक है उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, फंडामेंटल राइट्स का, और ये जो थ्रेटन कर रहा है अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बताइए कि यूरोपियन यूनियन इसलिए भी इनको पसंद नहीं करते, ना सिर्फ पुतिन साहब की दोस्ती की वजह से, बल्कि इन्होंने बहुत दफा कहा है कि यूक्रेन को हम बेतहाशा एड दे चुके हैं और इस एड को रोकने की जरूरत है, और बड़ी दफा इसने ब्लॉक करने की कोशिश की है उस एड को, तो उसके ऊपर भी यूरोपियन यूनियन को ज्यादा पसंद नहीं करती है। वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे लॉज जो हैं ये यूज करते हैं अपने करेंगे अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, और उनको 3-3 साल तक जेल में भी इस सूरत में रखा जा सकता है। ये जो इनका लॉ है यूरोपियन यूनियन की कमीशन के मुताबिक कि ये पुतिन साहब के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनके साथ मिलता जुलता है और ये वायलेट करता है फंडामेंटल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को, तो इसलिए जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर भी लड़ाई झगड़ा जो है जनाब वो शुरू हो गया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है वो अब सारे दौरे करके इजिप्ट और कतर के अब ये पहुंच गए हैं इसराइल के अंदर, और फिर भी इन्होंने आज यहां पे बात करते हुए कहा कि ये जो कुछ भी डिफरेंसेस हैं पैलेस्टीनियंस और इसराइलीज के बीच में उसमें बहुत सारा काम करना जो है वो रहता है, और सीज फायर की तरफ जाने के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हॉस्टेज रिलीज डील के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हमास जो है उसको जब ये डील जिसमें कि शामिल थे जो हैं अमेरिका और इजिप्ट और कतर, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि जी हम आपको अपना प्रपोजल देख रहे हैं तो उसके ऊपर आप गौर करो, जिसमें कि हमास ने कहा था कि हमारे तमाम के तमाम हॉस्टेजेस, जिसमें कि तकरीबन 1500 पैसेंजर्स प्रिजनर्स जो हैं उनका एक तो आप एक्सचेंज करें, उसके अंदर 500 तो ऐसे पैलेस्टीनियंस हैं जिनको के लाइफ सेंटेंसेज इसराइल में दी गई हैं और इमीडिएटली वॉर जो है उसको रोका जाए। बाइडन साहब ने तो इसके ऊपर कहा जी कि ये हमास की डिमांड्स जो हैं दे आर अ लिटिल ओवर टॉप, पता नहीं अब ओवर टॉप वाली इसमें क्या चीज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी कि हम टॉक्स जारी रखेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते इसराइल में, वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की और उन्होंने कहा जी कि इनको फ्री किया जाए हॉस्टेजेस को। नेतन्याहू साहब जो हैं वो इनकी ये बात मानने को तैयार नहीं है और इसके अलावा उनको कहा गया कि भाई एक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जरूरी है जिसको कि वो भी उसको भी मानने के लिए जो है नेतन्याहू साहब राजी नहीं है। ये ब्लिंकन साहब का पांचवां विजिट है मिडिल ईस्ट में ताकि इस जो वॉर की जो चल रही है इसको उसमें कुछ ठंडी लाई जा सके, भाईजान आप अपने वेपन्स देने बंद करो ना इसराइल को तभी आएगा। उसके बाद जी इनकी मुलाकातें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेजिडेंट महमूद अब्बास साहब के साथ भी हुई हैं और इन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया को कहना चाहिए कि वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। सऊदी अरेबिया ने अलबत्ता इनको बिल्कुल क्लियरली एंथनी ब्लिंकन साहब को कह दिया है जिस वक्त तक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगी ये लड़ाई नहीं रुकेगी, जो कि ये असॉल्ट जो गाजा के अंदर इसराइल कर रहा है ये जब तक खत्म नहीं होएगा हम बिल्कुल किसी तरह के डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ नहीं करेंगे। और अमरीका जो है इस वक्त बहुत ज्यादा कीन है कि सऊदी अरेबिया दोस्ती करे इसराइल के साथ, सऊदीया ने कहा है कि हम नहीं करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज है जी और इसके मुताबिक जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों साहब जो हैं उन्होंने ही पेड ट्रिब्यूट टू अक्टूबर 7 का ये जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर हमास की तरफ से, उसके विक्टिम्स को ये दे रहे थे, ट्रिब्यूट दे रहे थे एक नेशनल सेरेमनी में। उन्होंने कहा जी कि हमास ने जो किया है इट इज द लार्जेस्ट एंटी सेमेटिक मैसेकर ऑफ द सेंचुरी। मैक्रों साहब परहैप्स यू डोंट नो द हिस्ट्री, हॉलोकॉस्ट जब हुई थी तो उसमें 6 मिलियन ज्यूज को मारा गया था, 6 मिलियन। तो प्लीज रीड हिस्ट्री मैक्रों साहब, प्लीज रीड हिस्ट्री। ओके, तो कहते हैं जी कि ये जो अटैक है जिसमें 1200 बंदे मारे गए थे ये सबसे बड़ा एंटी सेमेटिक मैसेकर ऑफ सेंचुरी है, क्योंकि इसके अंदर 42 फ्रेंच सिटीजन्स भी थे और 3 जो हैं उनको अपेरेंटली कहते हैं कि हमास ने हॉस्टेज लिया हुआ है। इसके अलावा जो आज सेरेमनी हुई उसमें 3 चेयर्स जो थी उनको खाली रखा गया इन्हीं 3 हॉस्टेजेस की याद में, और इस सेरेमनी के ये उस वक्त इन्होंने ऑर्गेनाइज की है जबकि फ्रांस की जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर है स्टेफाने सेजोर्न उन्होंने एक अभी ट्रिप लिया हुआ है मिडिल ईस्ट का, जिसमें कि वो मिलेंगी इजरायली लीडरशिप और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का भी दौरा करेंगी और पुश करेंगी कि हॉस्टेजेस जो हैं उनको छोड़ा जाए। 4 फ्रेंच हॉस्टेजेस जो हैं उनको रिलीज किया जा चुका है हमास की तरफ से अभी तक, और आज जो है ये यहां पे ऑनर गार्ड्स जो थे वो दिए गए और इनकी फोटोज जो थी वो लेके वो लोग खड़े हुए थे जिनकी के डेथ्स हुई हैं हमास के अटैक में। और इसमें जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो है मॉन्यूमेंट एक जो कोर्टयार्ड पेरिस में है उसके अंदर उनके नाम और वो सारा कुछ जो सेरेमनी है वहां पे ये सब नजर आया। मैक्रों साहब ने कहा जी कि जो है वो बहुत सारे तो उनमें से वो डेथ उनकी हो गई जिनकी जो कि अभी तक 30 ईयर्स के भी नहीं थे, और ये जो इस तरह की टेररिज्म है उसको कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैक्रों साहब अगेन वो जो छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज मर रहे हैं वो तो 30 ईयर्स आप कह रहे हैं, वो तो एक साल बेचारे भी नहीं, एक महीना भी नहीं देख सके, उनके बारे में क्या ख्याल है। इसके अलावा और जो हजारों बच्चे जो मारे गए हैं जिनकी की उम्र 10 साल 12 साल से कम थी उसके बारे में मैक्रों साहब आपका क्या ख्याल है, लेकिन जाहिर है उनका तो आपको ख्याल है ही नहीं, उनके बारे में आपने बात करनी नहीं है। तो ये है अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेनिश जो ऑफिशियल्स हैं उनके इंटरव्यूज लिए हैं उसके मुताबिक स्पेन ने अपने हॉल्ट कर दिए हैं आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंसेज टू इसराइल जब से ये वॉर शुरू हुई है गाजा की। स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जोश मैनुअल अल्बेरेस उन्होंने कहा है जी कि ये जो 7 अक्टूबर की वॉर थी इसने हमें जो है वो ये याद दिलाया है कि एक फेयर और लास्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए पैलेस्टाइन कॉज का, जब तक ये नहीं होएगा तो ये लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने आज तमाम पार्टीज को अर्ज किया है कि ये जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फाइंडिंग्स लेकर आए थे इसराइल के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल इज प्लॉजिबली ब्रीचिंग जीनोसाइड कन्वेंशन इन गाजा, उसकी जो है वो पासदारी करें, और उन्होंने कहा जी कि इसराइल जो है उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये जो डायरेक्टिव है जो कि साउथ अफ्रीका के लॉयर्स की वजह से सामने आई थी, जो उन्होंने शिकायत की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि शायद इसराइल जो है जीनोसाइड कर रहा है पैलेस्टीनियंस का, उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको इसके डायरेक्टिव को मानने की जरूरत है। इसराइल ने अभी तक 27,700 पैलेस्टीनियंस को मार दिया है, जिसमें सैकड़ों ही जो थे बच्चे थे, औरतें थे, बूढ़े थे। इसके साथ साथ एक दूसरी भी रिपोर्ट आई है कि अथॉरिटीज ने इन वन ऑफ द बेल्जियम्स थ्री रीजन्स वहां पे भी टेम्पररली हॉल्ट कर दिया है गन पाउडर एक्सपोर्ट लाइसेंस टू इसराइल। मिनिस्टर क्रिस्टोफर कॉलिंगनॉन ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब से रूलिंग्स आई हैं तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ये असला जो है इसराइल को नहीं पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से ये हॉल्ट किया गया है। तो ये जनाब कुछ कुछ तो मूवमेंट आ ही रही है यूरोप के अंदर। और जनाब जर्मनी जो है उसकी बदबख्तियां जो हैं वो कम हो ही नहीं रही हैं। आपको पता ही है, हम आपको गाय बताते जा रहे हैं कि बहुत सारे जो इनके जो लोग हैं, यूनियंस हैं, वो कर रहे हैं स्ट्राइक के ऊपर है। आज लुफ्थेंसा जो है उसने अपने ग्राउंड स्टाफ को कहा है कि आप 24 आवर्स के लिए जॉब से आप स्ट्राइक करें, और आज 4 बजे से लेके कल 8 सितंबर तक जो है, सॉरी 7 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक जो है ये जो स्ट्राइक है ये चलेगी। ये जो यूनियन है इनकी वर्डी, उसने आज कहा है जितना भी ग्राउंड स्टाफ था फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, डेजलडॉर्फ, बर्लिन और म्यूनिक एयरपोर्ट्स के ऊपर कि आप स्ट्राइक पे जाएं। ये तकरीबन जो है 25,000 एम्प्लॉयज जो हैं वो बनते हैं। यूनियन कह रही है कि इन लोगों को 12.5% पे रेज देने की जरूरत है, या कि एक एक्स्ट्रा 500 यूरोस पर मंथ जो है वो देने की जरूरत है, इसलिए कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। ये सब लोग जो है इनका ताल्लुक है जो एयरपोर्ट का एरिया, चेक इन, बैगेज हैंडलिंग, मेंटेनेंस और फ्रेट के अंदर जो स्टाफ है वो उनके साथ इनका ताल्लुक है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि रेलवेज वाले और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से और फिर फार्मर्स भी बहुत सारे जो हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं जो कुछ भी जर्मनी के अंदर चल रहा है, कि वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन ज्यादा है, पैसे कम हैं और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो आज लुफ्थेंसा की बहुत सारी फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल की गई और बहुत सारे ट्रैवलर्स को बहुत मुश्किल का सामना हुआ। तो ये स्ट्राइक जो है अब आगे चलेगी या नहीं वो हम फिर आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबाब। इनकी नई लोकेशन पे जाएं, बड़ी जबरदस्त उसकी जो है डेकोर है और खाना भी बड़ा मजे का, आपको पता ही है। 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 के ऊपर मिसिसागा में ये है, और इनका नंबर है 9052829797। इसके अलावा जी विलेज टेस, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, इनकी भी 2 रेस्टोरेंट्स हैं। फैसिलिटेटर्स आपको आप कॉल कर सकते हैं। एक इनका रेस्टोरेंट है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में, इनका नंबर है 9052323663। और दूसरी जो इनकी लोकेशन है वो ओकविल में है, 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, और तो इनका नंबर है 9052262294 पे। तो जनाब जाएं और खाने का मजा लें। ओके जनाब, पाकिस्तान के अंदर तो अब कल इलेक्शंस हैं और कुछ ही घंटे अब रह गए हैं, तो फिर भी जो है आज के दिन 7 फरवरी को, यानी कि कॉन्स्टेंटली टेररिस्ट अटैक्स वहां पे पाकिस्तान में होते रहे। आज बलूचिस्तान के 2 इलाकों में, एक पिशन में और एक किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए हैं, जिसमें कि 26 लोगों की डेथ है, और तकरीबन जो अभी न्यूज आई है उसके मुताबिक 50 लोग जो है वो इंजर्ड हैं। जो पिशन के अंदर ब्लास्ट हुआ है वो एक कैंपेन ऑफिस जो था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट असवंद यार काकड़, उसके जो तहसील खानोजई है इन PB47 कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे हुआ। दूसरी बॉम्बिंग जो है किला सैफुल्ला में हुई, जहां पे के JUIF का इलेक्शन ऑफिस था। पिशन एक्सप्लोजन जो है उसके अंदर 14 लोगों की जान गई और 12 लोग जो हैं वो किला सैफुल्ला में उनकी डेथ हुई है। मौलाना अब्दुल वसे जो है JUIF के कैंडिडेट, वो उस वक्त पार्टी के ऑफिस के अंदर मौजूद थे, और जो है वो जब ये हुआ, एक आदमी जो है इसके अलावा उसकी डेथ हुई है। एक और ब्लास्ट हुआ है हाजी लेमू गोथ में, गुलशन इकबाल में, कराची में वहां पे, और इसके अंदर जो है 2 लोग, एक जिसमें कि एक माइनर बच्ची भी शामिल थी, वो इंजर हुए। हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि ये जो हमला करने वाला था उसके हाथ में अभी ग्रेनेड था, तो उसके हाथ में ही वो ग्रेनेड प्री मेच्योरली फट गया, जिसकी वजह से उसकी टेररिस्ट की डेथ हो गई। इसके अलावा JUIF के सीनियर लीडर हाफिज हमदुल्ला जो हैं उनके ऊपर भी गन का अटैक किया गया बाय अनआइडेंटिफाइड असेलेंस, जब इनकी गाड़ी जो है वो चमन जा रही थी, लेकिन इस हमले में वो बच गए हैं। वो ट्रेवल कर रहे थे क्वेटा से चमन को जब उनको अटैक किया गया मेजाई अदा एरिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी खबर होती अगर ये JUIF के लीडर जो हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती एक दिन इलेक्शन से पहले। और जनाब PMLN जो है वो उसके बारे में अब तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो असेसमेंट की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये फिर से जो है सिंगुलर लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएंगे। PPP इज गोइंग टू बी अ डिस्टेंट सेकेंड और PTI जो है और दूसरी पार्टीज तो और भी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। एक जो एनालिसिस है वो किया गया है और ये एनालिसिस करने वाले जो हैं ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे पुलिस सोर्सेज से बात की है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, लेबर यूनियंस और इंटरव्यूज किए हैं जिसमें कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं इफ एवरीथिंग गोज ऑल राइट। अगर जो इत्तेहादी पार्टियों के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो शायद हो भी ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जाएं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं फिर से PDM की एक गवर्नमेंट की तरह की कुछ बनाएं। अलबत्ता वो कहते हैं जी ये जो आज जो सर्वे आया है उसमें PMLN जो है वो लाइकली नेशनल असेंबली की जो 336 सीट्स हैं उनमें से 115 से 132 सीट्स जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर रिजर्व्ड विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स को भी मिला लिया जाए तो सिंगल हैंडेडली ये अपनी गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकेंगे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में 297 में से डेफिनेटली 190 सीट्स जो हैं ये जीत सकते हैं। PPP जो है नेशनल असेंबली में 35 से 40 सीट्स जीत सकता है। PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो 23 से 29 सीट्स जीत सकते हैं। MQM 12 से 14 सीट्स और JI जो है वो 6 to 8 सीट्स, यानी कि जमीयते उलमाए इस्लाम JI। इसके अलावा PMLQ और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जो है ये दोनों 2 से 3 सीटें ईच जीत सकती हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वैसे भी जो आजकल में किए हैं जलसे किए हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर उनकी गवर्नमेंट को डिसलॉज ना किया जाता तो कोई भी आज नौजवान जो है इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयड ना रहता। हम एक तरफ लोड शेडिंग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे, चीप गैस प्रोवाइड करने की जो है वो सूचना में थे, इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे, टेररिज्म खत्म कर रहे थे, फार्मर्स को फैसिलिटेट कर रहे थे और PTI जो है वो धरने दे रही थी। अगर हमारी गवर्नमेंट रहती तो हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाते और अब भी अगर हमारी हुकूमत आई तो हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। ठीक है फाइन, चलो जो तुसी कह रहे हो उसी मान लेने हम क्योंकि वैसे जब वैसे PPP तो नहीं लेकिन PMLN की जब लास्ट गवर्नमेंट जिसको हटाया गया था 2018 में उस वक्त भी ये रिपोर्ट्स थी कि वाकई पाकिस्तान तरक्की की राह पे था। तो भाई डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं उनको क्यों आप हटाते हैं, आप उनको 5 साल पूरे करने दें फिर आपकी बारी आ जाएगी, फिर तुसी आके जो लूट मार करनी है तुसी कर लेना फैन, एक हुकूमत तो पूरी हो जाएगा। PDI की जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो अपने दोस्तों के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसके अंदर उन्होंने कहा जी रऊफ हसन साहब अपने जो इनके साथ दूसरे इनके दोस्त थे वलीद इकबाल थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी थे और अहमद अवैस थे, ये चार लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि रऊफ हसन साहब ने कि एक लंदन प्लान के थ्रू पिछले 22 जो मंथ्स है उसमें PTI को कम्प्लीटली डिसमेंटल करने की कोशिश की गई है और इमरान खान को पॉलिटिकल सीन से हटाने की कोशिश की है, लेकिन असल जो पावर होती है वो अवाम के पास होती है, दैट इज द बेस्ट रिवेंज। हम आपको कहते हैं कि 8 फरवरी को बाहर निकलें और इस इनजस्टिस के खिलाफ जो है आवाज उठाएं। उन्होंने कहा जी कि PTI उसके लीडर्स और उसके वर्कर्स को वर्स्ट स्टेट टेररिज्म और बारबेरिज्म जो है उसका सामना करना पड़ रहा है और एक रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो है वो स्टार्ट की गई है 9 अप्रैल 2022 से। उन्होंने कहा जी कि ये सारा का सारा जो काम है ये इसलिए किया जा रहा है कि शरीफ और जरदारी को फिर से वापस लेके आया जाए जिन्होंने के 1100 बिलियन रुपीस के घपले किए हैं, एक्सप्लॉइट किया है स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक NAB और FIA को और अपने ऊपर से जो है करप्शन के केसेस खत्म कराए हैं। PDI की जो गवर्नमेंट थी उसने तो ये जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी थी PTI के अंडर जिसमें के 6% से पाकिस्तान ग्रो कर रहा था उसको 0 पे लाके खड़ा कर दिया और इन्फ्लेशन जो है 48% बढ़ा दी। ये सारी जो इलीगल डिटेंशन, हैरेसमेंट, कस्टोडियल टॉर्चर और रेड जो हमारे घरों पर किए जा रहे हैं और लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी रोका जा रहा है क्योंकि ECP जो है अपने मास्टर्स के कहने के ऊपर काम कर रही है और हमें हमसे हमारा जो सिंबल था बल्ला वो तक हमसे ले लिया और इसमें इन्होंने डिस एनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की है 130 मिलियन वोटर्स को जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट है। उन्होंने लोगों को कहा जी कि आप 8 फरवरी को बाहर निकलें और इस चीज का आप बदला लें। इसके ऊपर बात करते हुए फिर जो इकबाल साहब थे उन्होंने भी कहा कि इमरान खान को एक फेयर ट्रायल तक नहीं दी जा रही, इन कैमरा जो है वो केसेस किए जा रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो है ये खिलाफ वर्जी है जिसमें कि कहा जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को फेयर ट्रायल देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जी हमें तो बाकी सब लोगों को तो बड़ी बड़ी रैलीज करने की इजाजत दी, हमें तो कॉर्नर रैलीज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही, तो मैं खास तौर पे यूथ और औरतों को कहता हूं कि आप लार्ज नंबर्स में कल सड़कों पे आएं, अपना वोट दें ताकि आपका लीडर जेल से वापस आ सके। इसके अलावा अब्बासी साहब जो है उन्होंने कहा जी कि 75 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि गिफ्ट्स की वैल्यू में गलत तरह की असेसमेंट्स की गई हैं और यह इसलिए हुआ है कि एक मैट्रिक पास बंदे को उधर बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है कि इन चीजों की क्या वैल्यू है। जिस वक्त उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में लाया गया तो वो कन्फ्यूज हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। तो इसलिए ये सारे के सारे केसेस जो हैं तोशाखाना के सिलसिले में ये सारे झूठे केसेस हैं, उसमें कोई ट्रूथ नहीं है जो इमरान खान साहब के खिलाफ लगाए गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है विधांत पाटिल उन्होंने आज कहा है कि यूएस का बहुत ज्यादा कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर शायद जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, हम चाहते हैं कि आप मीडिया को जो है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और ये जो इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हैं और ये जो इंटरनेट जो है उसको बंद किया जा रहा है, पीसफुल असेंबली नहीं करने दी जा रही कुछ सर्टन पार्टीज को, हमें पता चला है कि कुछ इन्फ्रिंजमेंट्स हैं कुछ जो हम आपकी स्पेस में देख रहे हैं जिसमें कि इलेक्शंस के कैंपेन्स चल रहे थे। उन्होंने कहा लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो वोट करें और अपने फ्यूचर लीडर्स जो है वो बिला खौफ के जो हैं वो इलेक्ट करें, लेकिन इसके अंदर वायलेंस और इंटिमिडेशन का यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है और अल्टीमेटली पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको डिसाइड करने दो कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है क्या होना चाहिए। तो हम जो है अमेरिका इस तमाम की तमाम चीज जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है उसको बहुत गौर से देख रहा है और हम इसके ऊपर जो है अपनी यानी कि टिप्पणी देते रहेंगे। कल आपको हमने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्पोक्स पर्सन है लिज थ्रॉसल उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी इंटिमिडेशन और पीटीआई के वर्कर्स और के साथ ये जो कुछ भी ड्रावा धमकारा और उनके फंडामेंटल राइट्स जो लिए जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंसर्न है। आज फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज जारा बलोच ने उसके ऊपर जो है कमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है उनकी गारंटी ना सिर्फ हमारे लॉज बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, हमने तमाम के तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो फाइनलाइज कर लिए हैं फरवरी 8 के इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो है लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से आजादी देता है कि वो आजादी से अपने जो है फ्री एंड फेयर तरीके से अपने वोट दे सकें और इसमें कोई भी जो है रुकावट किसी के लिए भी नहीं है। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने इंडिया के बारे में भी खबर अब लेकर वो आए हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वाइड स्प्रेड और अनलॉफुल डेमोलिशन ऑफ मुस्लिम होम्स और उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके ऊपर किया जा रहा है और उसके ऊपर हमारा बड़ा ज्यादा कंसर्न है। उनकी दो रिपोर्ट्स आ जाई हैं जिनका के नाम है बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया अनअर्थिंग अकाउंटेबिलिटी जेसीबीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोज इन जस्टिस इन इंडिया। तो ये दो रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें उन्होंने कहा जी खास तौर पे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके साथ इंतहाई अपॉलिंग तरीके से जो है वो ट्रीट उनको किया जा रहा है विच इज अनलॉफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी और ये जस्टिस के अगेंस्ट खिलाफ है, उनके घरों को बिजनेसेस को तोड़ा जाता है जिसके ऊपर लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने 128 इंस्टेंसेज जो है इंडिया में उनको डॉक्यूमेंट किया है जिसके अंदर 617 लोग जो है ऑल ऑफ देम मुस्लिम्स जो है अफेक्ट हुए हैं, उनके पास अब ना घर है ना उनके बिजनेसेस जो तबाह हो गए हैं तो लाइवलीहुड्स भी उनके पास नहीं है। उसमें उन्होंने कहा जी कि जो बीजेपी रूल्ड जो मध्य प्रदेश है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ दीज बुलडोजर्स एंड जो डिमोलिशन थी वो की गई थी विच इज 56 और इसके अलावा जो है 5 मेन स्टेट्स जो हैं उसके अंदर मुसलमानों पे बेतहाशा जुल्म किया जा रहा है जिसके के ऊपर हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तशवीश है। इसके अलावा दिल्ली के जो कोर्ट है उसने बुलाया है जी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल को टू अपियर इन कोर्ट ऑन फरवरी 17। उसकी वजह यह है कि ईडी ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, उन्होंने कहा था जी कि हमने इनको बहुत दफा 5 दफा बुलाया है लेकिन ये बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रहे हैं और ये नॉन कंप्लायंस और बल्कि डिफायंस जो है वो शो कर रहे हैं। ईडी ने कहा जी कि हमने इनको जो आईपीसी के जो क्रिमिनल कोड्स हैं उनके अंडर अब हम इनकी शिकायत कर रहे हैं कि इनको बुलाया जाए, लेकिन केजरीवाल साहब ने कहा था कि ये मुझे इलीगली बुला रहे हैं, इनका कुछ मुझे बुलाना बनता नहीं है। ये कंप्लेंट जो है ये एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में है जिसमें कि ईडी जो है यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केजरीवाल साहब से क्वेश्चन करना चाहता है कि ये सारा का सारा मामला क्या था जिसमें कि इनके मिनिस्टर्स जो है उनको भी पकड़ा गया था, खासतौर पर जो इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी। तो वो कहते हैं जी कि ये सारा का सारा जो है ये डिलिबरेट जो लूप होल्स हैं उससे ये चैनलाइज कर रहे हैं इलिसिट फंड्स अपनी पार्टी के लिए, उस सिलसिले में हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। तो अब कोर्ट जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया है, उन्होंने कहा जी आके इस सवाल का जवाब दें। जॉन अब्राहम जो है जी उनकी नेक्स्ट फिल्म जो है उसका जिक्र आज उन्होंने अपने एक्स के ऊपर किया, उन्होंने कहा जी मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वैडा होने वाली है, उसका आज उन्होंने एक पहला पोस्टर दिया जिसके अंदर शरवारी वागा जो है वो नजर आ रही है और वो जॉन अब्राहम के पीछे खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ही एक्शन पैक ड्रामा होगा। इसके उसको बना रहे हैं निखिल जिसने भी ये बनाया था सलाम इश्क और बाटला हाउस भी, तो ये फिल्म जो है ये जुलाई के अंदर रिलीज होगी। रणवीर कपूर जो हैं जी वो अब लॉर्ड राम बनेंगे नीतीश तिवारी की रामायणा के अंदर, और उसके लिए कहा जा रहा है जी कि उनको खास किस्म की जो उनके जो डिक्शन एक लिखी गई है या जो डायलॉग टीम उन्होंने क्रिएट की है तिवारी साहब ने उसमें उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो है रणवीर कपूर जो है संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में भी नजर आएंगे। सुष्मिता सेन जो है उन्होंने जनाब आज उनको काम करना कैसा लगा सलमान खान के साथ उसके बारे में और शाहरुख खान के साथ उसके बारे में आज उन्होंने कुछ दो बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब बीवी नंबर वन फिल्म बन रही थी तो डेविड धवन ने कहा कि क्योंकि सलमान खान शॉर्ट है और तुम बहुत ज्यादा टॉल हो तो तुम हील्स मत पहनना, तुम स्लीपर्स पहनना। तो जिस वक्त मुझे देखा उसने सलमान खान ने उसने कहा तुमने इतना ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है तो ये चप्पल क्यों पहनी है, हील्स क्यों नहीं पहनी। तो वो कहती है मैंने इनको कहा कि आप शॉर्ट हैं, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं अपनी हाइट मैनेज करूंगा तुम अपनी हाइट मैनेज करो तुम हील्स पहनो। तो वो कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है इसके ऊपर। इसके अलावा वो कहती है मैं जिस वक्त गाना दिलबर कर रही थी सिर्फ तुम के लिए तो फराह खान ने मुझे कहा था मैं जब भी फिल्म बनाऊंगी तुम्हें कैस्ट करूंगी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई अपनी तो उसके लिए मुझे बुलाया फिल्म सिटी में तो वहां पे मुझे शाहरुख खान भी नजर आए, तो मैंने उनसे पूछा शाहरुख क्या इधर कर रहा है, तो उन्होंने कहा शाहरुख भी इस फिल्म में है। तो कहती है ये मुझे सरप्राइज था, तो मेरी जिंदगी के यानी इंटरव्यू में अपनी में उन्होंने ये इस तरह की कुछ बड़ी मजे की बातें की। और जनाब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उन्होंने आज नॉमिनेट किया है तारिक बुगटी साहब को एज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आज इसका जिक्र किया है क्योंकि उन्होंने जो था इससे पहले रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद खालिद सज्जाद खोखर का, तो उन्होंने कहा जी कि अब इनको नॉमिनेट किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पाकिस्तान हॉकी। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से थ्रैश किया लास्ट ओडीआई के अंदर, और ओडीआई सीरीज जो कैनबरा में है उसमें जीती और अपना जो स्कोर था वो 6.5 ओवर्स में ही पूरा किया। इनके जो यंग सा बच्चा जेक फ्रेजर मैकग्रिग जो कि 21 ईयर्स का है 41 उसने स्लैम किए ऑफ 18 बॉल्स। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भी जो थी फर्स्ट गेम जीती थी मेलबर्न में बाय 8 विकेट्स और सेकेंड सिडनी में 83 रन से, और जो सीरीज थी वो क्लिंच की थी और इसमें जो है आज ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तारीफ की गई। और जनाब श्रीलंका ने अपना वन ऑफ जो मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ वो भी 10 विकेट से जीता और उसके अंदर इन्होंने भी बड़ी जबरदस्त जो है वो गेम की और इनको जो है आउट कर लिया था उन्होंने 56 रन्स में कोलंबो में जो के दिमुश करुणा रत्ने ने 32 नॉट आउट बनाया और निशान मंडासूका ने 32 नॉट आउट और इस तरह से वो जीत गए 7.2 ओवर्स में ही उन्होंने बना लिया था। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये रही कि जो इब्राहिम जदरान थे उसने 100 रन्स बनाए थे जिसका कि फिर उससे पहले टेस्ट के जो उसमें मगर कुछ भी इनका ना हो सका क्योंकि ये पहले भी उन्होंने इनको बोल आउट कर लिया था फॉर 296 और ये फिर सारा टारगेट इन्होंने पूरा कर लिया। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज बी अबाउट पीएसएल सीजन 9 जो कि फरवरी 17 से शुरू हो रहा है और इसमें पिशावर जेलमी जो है वो पार्टनर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के लिए और उनका एम्बलम जो है यूएनएचसीआर का वो भी उनकी जर्सीज पे नजर आएगा। आज जो है इनके अब्बास साहब जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ जावेद आफरीदी उन्होंने आज कहा कि जी ये जो सारी दुनिया के अंदर बेशुमार रेफ्यूजीज हैं उनके लिए हम उनके साथ यूएनएचसीआर के साथ उनकी कैंपेन में ज्वाइन करते हैं और उनको हम हेल्प करेंगे। पिशावर जेलमी एंड माय टीम इज जेलमी।
बड़े जालिम लोग
बड़े जालिम लोग हैं
बड़े जालिम लोग आप
ये थी हमारी आज की खरमे मजद भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये आज की खबरें, कल हमारे लाइव शो हो रहा है।
ओ यस,
बताएंगे उसके मुताबिक।
हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो है कल, आपको पता ही है इलेक्शन के रिजल्ट्स हमारे टाइम के डिफरेंस की वजह से बहुत सारे आगे होंगे, शाम 6 बजे। हाँ, पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं फरवरी 8 के, तो हमारा यहाँ पे बड़ा ही स्टेज सजेगा, हमारे बड़े एक्सपर्ट्स होंगे, पार्टी के जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और हम 6 बजे अपना ई आवाज पे टेलीथॉन शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो सारी हमारी स्पेशल आप दे सकते हैं, कुछ पाकिस्तान से लोग भी जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उन सबके साथ हम बात करेंगे, और हमारी पूरी टीम यहाँ पे होगी
ई आवाज के साथ साथ। आप अगर रेडियो सुनना चाहते हैं तो सब आप अपने सेल फोन पे 6478724900, हम कई दफा बताएंगे आपको कल, 6478724900 आपका नंबर याद रखें, और उसके ऊपर जो है आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लें, मगर वक्त अगर इजाजत देगा तो हम आपको जरूर आपका इनपुट बीच में डालेंगे, और वरना 6 बजे आपने जो भी करना है काम 6 बजे से पहले कर लें। हाँ जी, बहुत मिस करेंगे आप, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे यहां पर, और 6 बजे से लेके ऑनवर्ड्स एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम आपके साथ होंगे। इजाजत दीजिए कल तक के लिए, और पक्ष की बातें बाद में। अभी फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूं जीशान अहमद की जानेब, वहां पर वो जो है आपको एक नातिया कलाम सुनाएंगे, उसके बाद 5:38 पर आज मगरिब की अजान है, तो आपको अजान हम सुनाएंगे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, नौकिया की बातें कल। शाज़िद जी,
थैंक यू मच, आई विल सी यू इंशाल्लाह।
तुम्हारी निस्बत मेरा तो एक आसरा यही है, जिस तुम्हारा करम है आका है, काबा भी मर जाए मगर जो मकसूद आशिकी है, हुजूर के दर की हाजिरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, यही है खालिद असासरे मत, यही है खालिद असासरे मत, यही है खालिद बिनाए अजमत, नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है, नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
सामिन करम, टोरंटो और गिरदोनवा के इलाकों में अब टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का, तो आइए सुनते हैं मगरिब की अजान।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birash Broadcasting Corporation
and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
रोग लगाए खुद ही बेचारों का